इशिका, अभिमन्यु और पृथ्वी ऊपर के फ्लोर पर जा रहे थे। बातों ही बातों में उसने पूछा कि सुबह अभिमन्यु दिशांक के बारे में क्या बताने जा रहा था। पृथ्वी और अभिमन्यु को ये गलतफहमी हो गई थी कि दिशांक इशिका का बॉयफ्रेंड है। दिशांक की पर्सनल लाइफ के बारे में पता लगाकर वो इशिका को बताना चाहते थे ताकि वो दोनों अलग हो जाएं। लेकिन डॉक्टर मर्चेंट की सच्चाई सामने आते ही उन्हें दिशांक की सच्चाई का भी पता चल गया। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इशिका को क्या जवाब दें। पृथ्वी ने अपने मन में कहा, आज तो सच में फंस गए हैं, अब क्या बोले मिस सिंघानिया को कि हम उन पर शक कर रहे थे। पृथ्वी सोच ही रहा था कि इशिका को क्या जवाब दे, तभी अभिमन्यु ने झट से कहा, मैं ये कहना चाहता था कि दिशांक एक बहुत ही डेडिकेटेड और ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, तुम तो आंख बंद करके भी उस पर भरोसा कर सकती हो। सच में यही कहने वाले थे, इशिका ने सिर हिलाकर पूछा, जिस पर अभिमन्यु ने हां में सिर हिला दिया। इशिका को ये बातें जानी पहचानी सी लग रही थीं, क्योंकि एक बार पहले इशिका ने यही बातें अभिमन्यु को दिशांक के बारे में बताई थीं। इशिका उसे कुछ पूछ पाती तभी अभिमन्यु के पास किसी का कॉल आया। इसी के साथ उसने राहत की सांस ली। कॉल पर बात करते वक्त अभिमन्यु के चेहरे के भाव सर्द होने लगे। पृथ्वी अभिमन्यु की तरफ ही देख रहा था। उसके बिगड़े हुए चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर उसने मन ही मन कहा, जरूर ये राघव मित्तल का ही कॉल होगा। अचानक उसे क्या हो गया है जो वो नक्श को इतना इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। अब ये क्या बात हुई कि जब तक नक्श को प्रोजेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट पोजिशन नहीं मिलेगी, तब तक वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आगे नहीं सोचेंगे। पृथ्वी को हैरानी हो रही थी कि आज इतना सब कुछ होने के बावजूद नक्श अचानक फिर से कैसे खड़ा हो गया था। वो पहले से भी ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे मित्तल फैमिली की तरफ से इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा था। बातें करते हुए वो तीनों ऊपर जा रहे थे, तभी उनकी नज़र कियारा पर पड़ी, जो व्हील चेयर पर थी। उसके पास उसके पेरेंट्स खड़े हुए थे। इशिका को देखते ही कियारा के चेहरे पर चमक आ गई। वो मुस्कुराकर बोली, मेरी लाइफ सेवियर। कियारा की बात सुनकर अभिमन्यु ने एक नज़र उसे देखा और फिर सीधा ऊपर चला गया। पृथ्वी भी उसके पीछे जा चुका था। वहीं इशिका कियारा के पास पहुंची। कियारा उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, तभी उसकी मॉम ने उसे फिर से बिठाते हुए कहा, कियारा बेटा, तुम्हारी अभी अभी सर्जरी हुई है और तुम्हें इस तरह उठकर नहीं बैठना चाहिए। डॉक्टर ने मना किया है, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। इशिका उनके पास गई। उसने देखा कियारा ने हॉस्पिटल की पेशेंट वाली ड्रेस पहनी हुई थी। इशिका उसे देखकर मुस्कुराई। उसके आते ही कियारा ने अपने मॉम डैड का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, लाइफ सेवियर, इनसे मिलो, ये मेरे मॉम डैड हैं, मिस्टर गौतम मित्तल एंड मिसेज नैना मित्तल। इशिका ने मुस्कुराकर उन्हें नमस्ते किया। नैना ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, थैंक यू सो मच बेटा, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने नर्स से बात की थी तो उसने बताया कि अगर तुम नहीं होती तो शायद हम अपनी किया को खो चुके होते। बोलते हुए वो थोड़ा मायूस हो गई। वो उम्र में लगभग 45 साल के आसपास की थीं और उन्होंने ब्लू डेनिम के ऊपर बेबी पिंक कुर्ता पहना हुआ था। इशिका को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने बस उनका हाथ सहलाकर कहा, चिंता मत कीजिए आंटी, सब ठीक हो जाएगा। इशिका ने कियारा की जान बचाकर उन पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। गौतम मित्तल इशिका के सामने आए और बोले, बेटा, तुम्हारे कहने से नहीं होता, तुमने सच में हमारे ऊपर एक एहसान किया है। हमारी बेटी हमें वापस लौटा दी। फ्यूचर में तुम्हें हमारी किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो बिना झिझक हमें बताना। तुम कहो, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अगर इशिका की जगह आज कोई और होता तो इतने अमीर आदमी के पूछने पर न जाने उससे बहुत कुछ मांग चुका होता। लेकिन इशिका ने काफी बेपरवाही से कहा, आप बहुत सोच रहे हैं अंकल, ये बस एक कोइंसिडेंस था। मैंने इंसान होने का फर्ज निभाया है और कुछ नहीं। इशिका इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कियारा की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारी सर्जरी हो गई है क्या? हाँ, सर्जरी तो हो गई है, लेकिन डॉक्टर ने एक्स्ट्रा केयर करने के लिए कहा है, बस उसी के लिए मैं हॉस्पिटल में हूँ। कियारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अपने माँ बाप के पास आकर वो पहले की तरह काफ़ी खुश और स्वस्थ होने लगी थी। फिर उसने कुछ पल रुककर इशिका से कहा, अच्छा लाइफ सेवियर, मैं जब तक हॉस्पिटल में हूँ तुम मुझसे मिलने आओगी ना? मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, बस तुम अपना ख्याल रखना, इशिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कियारा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इस वजह से वो ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती थी। दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किया और फिर कियारा वापस कमरे में आ गई थी। जैसे ही वो कमरे के अंदर आई, नैना ने गौतम से कहा, मिस सिंघानिया दिखने में कितनी मासूम और खूबसूरत हैं, उनकी आंखों में सच्चाई नज़र आती है, वो एक बहुत ही अच्छी इंसान लगती है। बात करते हुए नैना ने ध्यान दिया कि गौतम खोए हुए लग रहे हैं। नैना ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? पता नहीं, लेकिन मुझे मिस सिंघानिया कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं, गौतम ने सिर हिलाकर कहा। जानी पहचानी सी लगती हैं, लेकिन कैसे? हम तो उससे पहली बार मिल रहे हैं, नैना ने हैरानी से पूछा। गौतम उनकी बात का कोई जवाब देते तभी अंदर राघव किसी के साथ वहां पर आया। वहां आते ही राघव ने दूसरे शख्स का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मॉम डैड, ये नक्श राजवंश है, मिस सिंघानिया के मंगेतर। न जाने क्यों, लेकिन गौतम और नैना को नक्श का वहां आना पसंद नहीं आया। कियारा को उस हादसे के बाद लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत होती थी। उन्हें लगा कि नक्श के आने की वजह से कियारा अनकंफर्टेबल हो गई होगी। उनके लिए मिस सिंघानिया का मतलब इशिका से था, और जैसे ही उन्होंने नक्श के इशिका के मंगेतर होने की बात सुनी तो तीनों के चेहरे के भाव तुरंत नरम हो गए थे, वरना उन्हें नक्श का वहां आना पसंद नहीं आया था। कियारा नक्श को निशिका के होने वाले लाइफ पार्टनर के हिसाब से देख रही थी। वहीं नक्श मिस्टर एंड मिसेज मित्तल से उनके हालचाल पूछ रहा था। नक्श ने कियारा की हेल्थ के बारे में भी पूछा और फिर बाद में वहां से चला गया। नक्श के जाने के बाद गौतम और नैना ने एक दूसरे की तरफ देखा, और फिर नैना ने धीरे से कहा, मिस सिंघानिया कितनी अच्छी लड़की है, और उनका मंगेतर मुझे घमंडी लगा। उनकी चॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन हम इस मामले में क्या कर सकते हैं, जब उन्होंने इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोच ही लिया है। सच कहूं तो मुझे मिस सिंघानिया काफी एलिगेंट और इनोसेंट लगी। उनकी बात सुनकर राघव ने हैरानी से कहा, एलिगेंट और इनोसेंट? उसके दिमाग में आयशा का चेहरा घूम रहा था, जो एलिगेंट और इनोसेंट तो किसी भी तरीके से नहीं थी। राघव ने आगे कहा, मॉम डैड आप भी ना किसी की भी बातों में आ जाते हैं, मुझे मिस सिंघानिया कहीं से भी एलिगेंट और इनोसेंट नहीं लगी। वो लड़की अच्छे से जानती है कि किस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाना है, और उठा भी रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतना डिमांड करेगी। मीटिंग के दौरान आयशा ने राघव से काफ़ी डिमांड्स रखी थी, जिसके बाद में उसकी बहन की जान बचाने वाली लड़की की इमेज उसके दिमाग में बुरी तरह खराब हो चुकी थी। राघव की बातों का मतलब समझते हुए गौतम ने कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा है, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि उसने कोई डिमांड की है? राघव ने गहरी सांस ली और पूरी बात बताते हुए कहा, उसने सीधे तौर पर यह कहा है कि आने वाले प्रोजेक्ट में नक्श राजवंश को एक इम्पोर्टिंग पोजीशन मिलनी चाहिए। पहले ही अभिमन्यु के प्रोजेक्ट में होने की वजह से हम काफ़ी सफर कर रहे हैं, उससे डील करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से नक्श के आ जाने की वजह से मामला और ना बिगड़ जाए, बस ये कोलैबोरेशन डील अच्छे से हो जाए।
पूरी बात जानने के बाद गौतम का चेहरा सख्त हो गया था। वो बोला, उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो एक ऐसी इंसान होगी। वाकई उसने हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नैना को भी सब जानने के बाद काफ़ी बुरा लगा। वो बोली, ठीक है, उसने हमारी कियारा के लिए इतना सब कुछ किया है, तो हम उसके लिए कुछ करेंगे तो वो कम ही होगा। मुझे वो एक सच्ची और ईमानदार इंसान लगी थी, तो सोचा मेरी किया को एक अच्छी दोस्त मिल जाएगी। समीर के बाद कोई ऐसा वैसा शख्स कियारा की जिंदगी में आए, ये राघव कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने कियारा से सख्त लहजे में कहा, किया, आगे से तुम मिस सिंघानिया और उनके मंगेतर से दूर ही रहोगी। मैं नहीं चाहता कि समीर जैसा लालची इंसान तुम्हारी जिंदगी में फिर से आए, चाहे वो किसी लड़की के रूप में ही क्यों ना हो। हम खुशकिस्मत हैं जो हमने पैसे देकर उसका एहसान चुका दिया, और वो बार बार हमारे सामने नहीं आएगी। इशिका के बारे में इतना सब कुछ भला बुरा सुनने के बाद कियारा का चेहरा उतर गया था। वो उदासी से बोली, लेकिन भाई मिस सिंघानिया ऐसी लड़की नहीं है, बहुत अच्छी है वो। कियारा, इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी तुमने सबक नहीं सीखा ना, राघव ने भौंई चढ़ाकर कहा। उसका सीधा सीधा इशारा समीर की तरफ था। उसके हिसाब से उसकी बहन कियारा को लोगों को परखने की समझ नहीं थी। कियारा ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया, हालांकि उसका दिल अभी भी नहीं मान रहा था कि वो उनकी बातों पर यकीन करे। उसने इशिका का असली चेहरा देखा था। जब सब उसे मारने पर तुले हुए थे, तब वो इकलौती शख्स ऐसी थी जिसने उसे जीने की उम्मीद दी और उसका साथ निभाया। वहीं दूसरी तरफ वसुधा ने काफ़ी सख्त तरीके से किसी भी राजवंश फैमिली के मेंबर को उनसे मिलने के लिए मना किया था। उनके मना करने के बावजूद नक्श उनसे मिलने के लिए उनके वार्ड की तरफ बढ़ रहा था। अंदर घुसने से पहले नक्श ने कांच की खिड़की से अंदर की तरफ झांका तो उसने देखा इशिका और अभिमन्यु काउच पर दूर दूर बैठे हुए थे। वो दोनों अपने अपने लैपटॉप में ज़रूर लगे हुए थे, लेकिन उन दोनों को साथ देखकर नक्श के मन में जलन पैदा हुई। नक्श अंदर गया और वसुधा को प्रणाम किया। उसके बाद वो वापस जाने से पहले अभिमन्यु के पास रुका। वो इकलौता शख्स था उसकी फैमिली में जिससे वो डरता था। हालांकि उम्र में नक्श और अभिमन्यु में ज्यादा फर्क नहीं था, मुश्किल से अभिमन्यु नक्श से 3 या 4 साल बड़ा होगा। इशिका ने नक्श की तरफ देखा तक नहीं, जिसकी वजह से नक्श अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी मुठ्ठियाँ बंद की और अभिमन्यु से कहा, चाचू मित्तल फैमिली मुझे बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है, आज आपने मीटिंग में देख ही लिया था। R&D डिपार्टमेंट के जूनियर मैनेजर की पोजीशन मेरे लिए बहुत छोटी है, क्यों ना आप मुझे इस प्रोजेक्ट का हेड डायरेक्टर बना दे? उसके कहते ही पूरे वार्ड का माहौल गंभीर हो गया था। इशिका ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। नक्श की बातों से साफ था कि वो मित्तल फैमिली का सहारा लेकर अभिमन्यु को ब्लैकमेल कर रहा था। प्रोजेक्ट कंपनी के लिए ज़रूरी था और इसी बात का वो फ़ायदा उठा रहा था। अभिमन्यु ने सख्त निगाहों से नक्श की तरफ देखकर कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हेड डायरेक्टर की पोजीशन भी तुम्हारे लिए छोटी है? उसकी बातें सुनकर नक्श के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसे ऐसा लगा कि शायद मित्तल फैमिली ने अभिमन्यु पर ज्यादा प्रेशर डाला था,
इस वजह से उसे अब हेड डायरेक्टर की पोजीशन देनी भी छोटी लग रही थी। नक्श की खुशी कुछ पलों की ही थी, तभी अभिमन्यु बोला, अच्छा फिर मेरी क्या पोजीशन होनी चाहिए, ये नहीं बताया तुम्हारे मिस्टर मित्तल ने। अचानक नक्श का चेहरा उतर गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो जिस पोजीशन की डिमांड कर रहा था वो पोजीशन सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु के पास हो सकती थी। हालांकि अभिमन्यु ने काफी हल्के तरीके से कहा था, फिर भी उसकी बातें नक्श पर गहरा असर कर रही थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी और अपने आप ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। नक्श ने गहरी सांस ली और कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अभिमन्यु तो नक्श की बात का जवाब देना तक जरूरी नहीं समझता था। उसने बिना किसी भाव के कहा, आगे से कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, दादी की परमिशन के बिना उनसे मिलने की कोशिश मत करना। नक्श को लगा कि अभिमन्यु उसे बुरी तरह सुनाने वाला है, लेकिन उसने बात को यहीं छोड़ दिया था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और जल्दी से बाहर चला गया। बाहर आते ही उसे बहुत बुरा लग रहा था, इशिका के सामने उसकी इतनी इंसल्ट हुई थी। नक्श ने एक नज़र इशिका की तरफ देखा और फिर वहां से चला गया। नक्श के जाते ही पृथ्वी का गुस्सा फट पड़ा था। वो बोला, ये लड़का कभी नहीं सुधरने वाला है, आज इतनी इंसल्ट हो गई फिर भी इसका घमंड कम नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि ये मित्तल फैमिली का सहारा लेकर आपको प्रेशराइज कर रहा है? अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो मित्तल फैमिली कहीं नाराज ना हो जाए, इसका असर हमारे प्रोजेक्ट पर भी पड़ सकता है। अभिमन्यु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इशिका ने बीच में दखल देते हुए कहा, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? पृथ्वी तुरंत जवाब में बोला, ये प्रोजेक्ट न्यू एनर्जी पर नहीं है, ऊपर से आपकी मित्तल फैमिली में किसी से जान पहचान भी नहीं है, तो आप इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकती हैं। इशिका ने सिर हिलाया और फिर चुप हो गई। उसने इस बात को नहीं बताया कि वो कियारा से जुड़ी हुई है, मिस्टर और मिसेज मित्तल ने भी उसको फ्यूचर में हेल्प लेने के लिए कहा था। वहीं वसुधा जो पूरी बात को सुन रही थी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिगड़ने लगे थे। वहां मित्तल फैमिली की बात हो रही थी जिनके बारे में उन्हें कुछ कुछ याद आ रहा था, और वो अच्छा तो बिल्कुल नहीं था। अच्छा, किसी को आइडिया है कि अभिमन्यु और राघव मित्तल के बीच क्या टेंशन हो सकती है जिसकी वजह से दोनों की बनती नहीं? और अब तो वसुधा जी को भी कुछ ना कुछ याद आ रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्ट पढ़कर समीक्षा किया करो, वरना मुझे लगता है कि फेक रीडर्स आ रहे हैं।